ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
திரிசங்கு ஸ்வர்க் பன் கயா. அப் ஏக் பாத் தூசரி பாத் யாத் ஆயேகி ஹம்கோ நரக் கே பாரே மே ஆப்கோ பதா தே ஃபிர் புல் ஜாயேங்கே. அபி தோடா தின் பாக்கி ஹே, தோடா आप लोग के साथ आनंद भी कर ले. एक बार यह हुआ कि किसी व्यक्ति को नरक में जाना पड़ा, तो वहां विकल्प थे कौन से नरक में आपको जाना था, पसंद की करो. एक जैसे आपको रिसेप्शन में जाते हैं ना, पंजाबी फूड, गुजराती फूड, साउथ इंडियन फूड, ऐसे होता है ना सब, ऐसे विकल्प था. तो विकल्प में क्या था, इंडियन हेल, भारतीय नरक. फिर दूसरा था अमेरिकन नरक, तीसरा था इंग्लैंड का नरक. वो भारतीय नरक में बड़ी लाइन लगी थी जाने के लिए, सब लोग वहीं जाना चाहते थे. वो देखने का अमेरिका के नरक में क्या है कि वहां तो बड़े बड़े लोहे का वो बिछाना बनाया था, खिले खिले किल, और उस पर सुलाया जाता है बड़े शाल, और वजन दिया जाता है, सब किल शरीर में गिर जाए, गट जाए, और उसके बाद उसको क्या है, वीप को क्या कहते हैं, कुछ कोड़ा 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 100 बार मारने का जोर जोर से. और तीसरा था इलेक्ट्रिकल चेयर में बिठा के हाई वोल्टेज करंट देने का, विद्युत शक्ति थे. उन्होंने ये देखा वहां कोई लाइन नहीं थी, इंग्लैंड वाले में वही थी पनिशमेंट, कोई लाइन नहीं थी, पर इंडिया के नरक में बड़ी लाइन थी, वहां भी यही सजा थी. पर एक होता था, जो भी भारतीय वो खिला वाला जो था ना, किल वाला, उसमें सोता था, एक दो खिले निकालता जाता था, तो बहुत कम बचे थे. हम लोग की आदत है ना, यहां से खींचते हैं बैठ बैठ के, नहीं ये जहां भी वो होगा वो खींचेंगे बैठ के. दूसरा था जिसके अंदर कोड़ा मारने का था, तो कोड़ा मारने वाला जो व्यक्ति था रजिस्टर में सही करके घर चला जाता था हर रोज, वो बैठता ही नहीं था वहां, इसलिए वो मारने वाला नहीं था. और बिजली का करंट देना था, उसमें क्या था, बिजली नहीं रहती थी पूरे दिन, तो तो सबसे बढ़िया नरक कौन सा है, नरक ही अच्छा नहीं, क्या इंडियन नरक है ना. ये नरक का किसी व्यक्ति को सजा दी गई इलेक्ट्रिकल चेयर में बैठ के उसको फांसी की सजा, माने बिजली के मार लाने का. जब प्रोसीजर शुरू होने वाली थी, तो जो एग्जीक्यूटर था, दंड देने वाला था, जल्लाद ने पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है. वो पूछते ना अंतिम इच्छा. उसने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जरा मेरा हाथ पकड़ के रखेंगे. मैं भी जाऊं आपको भी ले चलो. तो आइए आगे बढ़िए. तो योगी है विश्वामित्र, न कोई उपादान कारण है उनके पास, न कोई निमित्त कारण है, संकल्प मात्र से सृष्टि पैदा कर दे. इसको कहते हैं सत्य संकल्प. जिनका संकल्प सत्य हो जाए, ये सब बात को छोड़ो, हम तो कहते हैं आप भी महायोगी है कि नहीं. हर उस स्वप्न में वो जगत बनाते हैं जिस बनाने में आपको समय लगता है, ईंट लाओ, मिट्टी लाओ, पानी लाओ, सीमेंट लाओ, ऐसा है. वहां का घर कितनी देर में बनता है, इतना बड़ा, वो भी नेपेंसी रोड पे 3000 स्क्वायर फुट का घर मिल गया आपको. 3000 मानी कितना करोड़ है यहां मालूम नहीं हमको. नहीं तो आपने सोचा हमारा भी अंबानी के बगल में नया ऐसे ही बिल्डिंग बन गया, बना सपनों में बन जाएगा. उनको कितना साल लगा और आपको हेलीकॉप्टर पैड के साथ मिला. तो उनका तो अभी नहीं बना है पैड, बना कि नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं आता उस पर, ठीक है. आपका तो हेलीकॉप्टर के साथ आ गया. तो इतना बिल्डिंग बनाया, हेलीपैड बनाया, और यहां अविवाहित थे, वहां 3 बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, सब कुछ दिखता है कितने क्षण में. आप कौन है, योगी है कि नहीं, योगी नहीं, आप तो ईश्वर है. with reference to your dream, you are Ishvara. With reference to this world, he is the Ishvara. अगर सृष्टि जो दिखी जाए स्वप्न जगत की, वहां भी वही सूर्य चंद्रमा है, वही आकाश पानी है, वही अग्नि है, वही लोक परलोक है, सब कुछ है. इसलिए ये जो हमारे अंदर भी भीतर भी सबके भीतर भी ये योगी की तरह एक जादूगर की तरह ये बनाने की शक्ति निहित है. अब दूसरी बात, स्वप्न का जगत स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे तु असंभवेत. स्वस्मिन काले, स्वप्न काले सत्यवत भाति. राजा जनक खूब भारी भोजन करके सो गया और स्वप्न में देखता है कि मैं 20 दिन का भूखा हूं और सबसे भीख मांगता हूं, कोई एक रोटी नहीं देता है. इतनी सबको वो प्रार्थना करता है, पांव पड़ता है, एक पानी का बूंद नहीं मिलता है, एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है. बड़ा दुखी है. खा पी के सोया हुआ जनक अपने को क्या देखता है? अत्यंत दुखी दरिद्र देख रहा है. तो स्वकाले क्या है? सत्यवत बाती. आपको याद होगा राजा जनक विचारवान थे. जब स्वप्न से जागे तो सब पंडितों को पूछा, यह सत्य की वह सत्य, वह सत्य की यह सत्य. जनक की बात कोई नहीं समझ पाया. सिर्फ अष्टावक्र, अष्टावक्र मानी वर्ड, जिनके सब अंक क्या थे? वक्र थे. बुद्धि टेढ़ी नहीं थी, अंक्र अंक थे. अष्टावक्र जी के सामने बात आई, उन्होंने तत्काल, देखो इसको कहते विद्वान, विद्वान है, ब्राह्मण है, उन्होंने कहा न यह सत्य न वो सत्य, दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही मिथ्या है. क्यों? दृश्यत्वात. एक ही लॉजिक याद रखना, जादूगरी का खेल भी दिख रहा है, योगी की माया भी दिख रही है, दोनों दिख रहे हैं पर है नहीं, और जो दिखता है वो सचमुच में होता नहीं है. घड़ा दिख रहा है पर है नहीं, सर्प दिख रहा है पर क्या है? है नहीं. इसलिए दिखने पर, प्रतीति होने पर भी वो सत्य नहीं हो जाता है. जो प्रातीतिक जगत है, प्रपंच है, वही मिथ्या है. यह दृश्यम तज्जडम तन्मर्त्यम तद्दुखात्मकम तत्हेयम. आप पांच बात याद रखना, जो दिखे यह दृश्यम तज्जडम. ये टेबल हमको दिखता है, ये जड़ है. ये पुस्तक हमको दिखता है, जड़ है. आपका शरीर भी हमको दिखता है, क्या है? जड़ है. आपको भी आपका शरीर दिखता है, क्या है? जड़ है. यह दृश्यम तद जड़म. और दूसरा लक्षण बता दिया, मर्त्यम. जो दिखने वाला प्रातीतिक है वो क्षण भंगुर है. दृष्ट नष्ट स्वभाव. जो जो दिख रहा था अभी नहीं है. आप मुझे वर्तमान में दिख रहे, मैं अभी दिख रहा हूं आपको कि नहीं? वर्तमान स्वामी दिख रहा है कि भूतकालिक स्वामी दिख रहा है? वर्तमान का स्वामी दिख रहा है कि भूतकाल का स्वामी दिख रहा है? प्रेमपुरी वालों को मौन करने का उपाय भी है, यही है. Ask them a question, then they are suddenly, आप जब तक मुझे देखते हैं मेरे विषय में वृत्ति बनती है और ये पहचानते ये स्वामी है, तब तक मैं बदल गया कि वो रह गया? तो आपने कौन सा स्वामी को देखा? पूर्व क्षण के स्वामी को देखा. आप कभी वर्तमान को नहीं देखते, किसको देख रहे हैं? भूत को देख रहे हैं, भौतिक भूतकालिक दिख रहे हैं। ओनली पास्ट यू सी, यू नेवर सी प्रेजेंट। आप लोग को मालूम है ये सूर्य चंद्रमा और तारा दिखते हैं वो वर्तमान के दिख रहे हैं कि भूतकाल के दिख रहे हैं? कभी कभी तो 5000 साल पहले का तारा इस समय दिखता है, वहां से जो प्रकाश निकला था वो 5000 साल पहले निकला था, आज आपको दिख रहा है, आपको दिखता है अभी है, पर ये कितना पुराना है। तो आप भूतकाल को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। इसलिए दृष्ट नष्ट था अभी बदल गया। आपको लगता है दिख रहा है और बदल, आपका मन भी जो वृत्ति अभी है, जब तक वृत्ति को आप प्रकाशित करें तब तक क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आप लोग को एक बात बता दे, सुबह सुबह आजकल सबसे बड़ा पैसा कमाने का ढंग, कमाने का उपाय है ध्यान की चर्चा करो। मेडिटेशन इज बिग बिजनेस, माइंड इज ए बिजनेस। मन की चर्चा करो, लोग आ जाते हैं और वो लोग कहेंगे, यहां भी आप लोग ने सुना होगा, मन को काबू में करो। सुना है कि नहीं? अरे सुबह तो ईमानदारी रहो, बाद में जो करना है करना, पर बी ऑनेस्ट इन द मॉर्निंग। कंट्रोल योर माइंड, काबू करो। इज इट पॉसिबल? इज इट नेसेसरी? अच्छा, पहली बात, मन को काबू में तब कर सकते हैं कि आपके पास मन हो। मालूम है आप किसको काबू में कर सकते? कोई चीज है, मैं अपनी घड़ी को काबू में कर सकते, मेरे हाथ में घड़ी है, काबू में है, ये कागज मेरे काबू में है। पर मन तो क्या है? प्रतिक्षण प्रद्युम समान है। मृत्यु आती है, एक क्षण में रहती क्या होती है? नष्ट हो जाती है। वो तो क्षणभंगुर है। जो वृत्ति एक एक क्षण में नाश होती जाती रही है, जो है ही नहीं, उसको कंट्रोल क्या करोगे? मानिए बेटा बिजनेस है कि नहीं? ब्लफिंग, ब्लफिंग ऑल द टाइम। ब्रह्म अर्जुन ने पूछा, चंचल ही मन कृष्ण? भगवान ने भी कहा, हाँ मन तो चंचल ही है, उसका नियंत्रण कोई नहीं कर सकता है। मन का नियंत्रण क्या है वो बात दूसरी है, उसको काबू में नहीं कर सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं, उसकी जो गतिविधि समझ सकते हैं, ये वेदांत है। लोग आजकल इतना सामान्य चीज भी नहीं समझते, मन को काबू में रखो, ये सब क्या बात है। आइए, तो मन भी प्रतिक्षण प्रध्वम समान है, अगले क्षण रहता नहीं है। ये जगत जो दिख रहा है वो क्या है? दृश्यम, जड़म, मर्त्यम और क्या है? दुखम। इसके पीछे पीछे जाओगे तो हाय हाय मर गया, बिछुड़ गया, रोने रोने पिटना हो जाएगा। अगर समझ जाओगे इनका स्वभाव क्या है, आया राम। हाँ बोलते हैं पर स्वामी जी, वो तो मच्छर मक्कड़ जाए तो हमको क्या आपत्ति नहीं है, पर जब नजीक की चीज आती है, अपना शरीर भी क्या है, आया राम, राम रहा राम, नहीं ये भी क्या है, जाने वाला है, जाने दो उसको, बहुत बढ़िया है। प्रतिक्षण प्रद्युम समान है। इस प्रकार से ये भी मिथ्या का लक्षण है। प्रतिक्षण प्रध्वम समान है, जल बुद्बुद इव गंधर्व नगरीवत कदली फलवत असार है, कदली स्तंभवत असार है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसा जो जगत है, उस जगत का नियंता कौन है, बनाने वाला कौन है? तो कहा है ईश्वर। अगर जगत मिथ्या है तो उसको बनाने वाला कारण भी क्या होगा, बताइए? मिथ्या ही होगा। इसी का नाम है माया। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। माया शब्द से डरना नहीं, ये भगवान की शक्ति है। पुरुष चैतन्य है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस, सत्व माने जिसमें विचार है, जिसमें शांति है, रजस माने जिसमें प्रवृत्ति है, और तमस माने जिनमें जड़ता है। और ये क्रम है, सत्व क्या बन जाता है धीरे धीरे, रजस, ठीक है, और रजस क्या बन जाता है, तमस, और तमस क्या बन जाता है, सत्व, ठीक है ना। यहां गड़बड़ में जानता है सब लोग को हाँ हाँ करने की आदत बहुत अच्छी, हाँ महाराज जी हमको तो पार्किंसंस हुआ है, सब में हाँ हाँ करेंगे, तो सत्व रजस बन सकता है, रजस तमस बन सकता है, तमस कभी सत्वा, द पेंडुलम मूवमेंट, सत्व रजस तमस, तमस रजस सत्व, रजस दोनों ओर जा सकता है, रजस सत्व भी बन सकता है, तमस भी बन सकता है, ये मर्यादा है। तो ये जो सत्व रजतमो गुणात्मिका माया है, इसको अपने वश में करके, उनके परवश न होकर, ये भगवत शक्ति है, इसको वश में करकर ये परब्रह्म देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। आपको देखो जगत सबसे बड़ा रहस्य है और आश्चर्यकारक है, देश और काल साथ में प्रकट हुए, स्पेस एंड टाइम आर ऑलवेज टुगेदर, दोनों के साथ सब गुण प्रकट हो गए और सृष्टि आरंभ हो, सृष्टि प्रकट आरंभ नहीं हुई, सृष्टि थी पुनः फ्रॉम अव्याकृत से व्याकृत हो गई, अव्यक्त से व्यक्त हो गई। दृष्टांत देते, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्राग निर्विकल्पं पुनः। एक वटवृक्ष का बीज लीजिए, वटवृक्ष का पूरे पूरे वटवृक्ष की डालियां, पत्ते, फूल, सुगंध और फल, उसका स्वाद, उसका पत्ता, ये सब कहां है, बीज में। अगर काट के देखोगे तो उसमें निकलेगा कुछ, कोडिंग, कोडिंग मालूम है ना, दुनिया में जितनी चीज है उनका जो जो बीज है, गेहूं के बीज में गेहूं के गुण, चावल के बीज में चावल के गुण, और मूंग के बीज में मूंग, सबका अलग अलग है। और वो जब बीज को काटते तो कुछ दिखता नहीं है, दुनिया में जितनी चीज है उसकी बीजावस्था में वो कोडेड है। अगर तोता का अंडा होगा उसमें तोता का सर्व पूरा लक्षण क्या है, उसमें कोडेड है। अगर हाथी का भी बीज है, वीर्य है, उसमें भी क्या है, पूरे इतने बड़े हाथी की सब माहिती उसमें है, कैसे सिंह हो, कैसे दांत हो गए, कैसी ऊंचाई होगी, कैसा स्वभाव होगा, कैसा रंग होगा, कैसा, ये सब बात उसमें है। और आप लोग भी जिस बीज से प्रकट हुए, सबका बीज एक था कि अलग अलग था, बीजत्वे ना दिखता है एक, पर सबके अंदर अलग अलग हम लोग निकले कर एक है, अलग हर एक व्यक्ति का स्वभाव अंदर था, जीन्स में था, कोडेड, ऐसा बिग रहस्य वहां था, इसलिए प्रकट हुआ, प्रकट हुआ इसलिए वहां क्या था, अव्यक्त। अभी भी वैज्ञानिक लोगों के लिए सबसे बड़ा रहस्य क्या है, एक क्रोमोसोम्स कैसे कैसे कंट्रोल। तो यहां कहते हैं ये सृष्टि भी अपनी उत्पत्ति के पूर्वक क्या थी, अव्यक्त अवस्था में थी, फिर क्या हुई, व्यक्तावस्था को प्राप्त हुई, उसको कहते हैं सृष्टि, फिर अंतिम अवस्था क्या है, फिर विलय हो जाए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अगर आप वैज्ञानिकों की कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाइए और वेदांत की ये बात कहिए, सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त हुई है, सृष्टि का नया सर्जन नहीं हुआ है, तो वो लोग इतने खुश हो जाएंगे। जब ये कहते पैदा हुआ, नया पैदा हुआ, तो ये कोई वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं है। जो सद था, सद वा इदमग्र आसीत, असद वा इदमग्र आसीत, आत्मा वा इदमग्र आसीत। सद ब्रह्म ही सृष्टि के पहले था, असत मानी प्रकृति के साथ, माया के साथ ये समग्र सृष्टि बीजा रूप में पहले थी और अब क्या हुआ है, प्रकट हो गई। और इसलिए सृष्टि में सब क्या है, अनादि, किसी का आदि नहीं हुआ। आपका जन्म कब हुआ स्वामी जी? 1 अप्रैल को, 4:20 को, है ना, 420। 1 अप्रैल इडियट इज बॉर्न, दैट इज वाई। 1 अप्रैल मां के पेट से निकले तब, कि माता पिता का मिलन हुआ तब, कि माता पिता भी पहले थे, उनके शरीर में भी आए, कब आए आप? इनके आने के पहले भी आप थे, उनके पहले भी कहीं और जगह थे। तमे मारा देवना दीदे लछो, पहले थे, इनके माता पिता के पुत्र बने, सचमुच में हम उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं। वो न तो निमित्त कारण है, न उपादान कारण है। माता पिता ने न शरीर का उपादान मसाला बनाया, न जीव को प्रकट किया, दोनों तो थे, वो तो सहकारी कारण है, यही है। सब लोग थे, अब प्रकट हुए हैं, फिर क्या हो जाएंगे? फिर अब पकड़े, जैसे एक तीर निकलता है अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से फिर अंधकार में चला जाता है, ऐसे सृष्टि अनादि है, चक्र है। चक्र है मानी व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त व्यक्त, ये चलता रहता है। शंकराचार्य महाराज ने बहुत बढ़िया किया, ये जो सृष्टि दिख रही है वो ब्रह्मात्म से अभिन्न है, मिथ्या है, पर काम करती है। और बीज में जैसे अंकुर निकलता है फिर बीज रूप हो जाता है, ऐसे प्रकट होती है फिर अप्रकट हो जाती है। इस प्रकार से द्वितीय श्लोक में ईश्वर तत्व का निरूपण हुआ, प्रथम श्लोक में प्रत्यगात्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ, और तृतीय श्लोक की जिसकी कल चर्चा की जाएगी, जीव और ब्रह्म का ऐक्य का निरूपण होगा। 2 मिनट ज्यादा चली गई, हमको क्षमा करना। ओम शांति शांति शांति।